कुटिया का दरवाजा और बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। क्या आपने मुझे उठा दिया? बाहर के व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैंने तुम्हें उठा दिया। तुम साधक हो, 4 बजे उठते हो नियम से और उसके बाद ध्यान धारणा करते हो, तो मैंने सोचा कि आज तुम सो रहे हो तो तुम्हारे इस नियम में किसी प्रकार का व्यतिक्रम ना हो, इसलिए मैंने उठा दिया। बड़े संत पुरुष हैं आप। आज सचमुच में मैं सो ही गया था, बड़ी कृपा की आपने। भीतर आइए, आइए भीतर आसन ग्रहण कीजिए। आप जैसे संत पुरुष के दर्शन करके आज सुबह ही सुबह मैं तो कृतार्थ हो गया। बुलाने लगा। बाहर के व्यक्ति ने कहा कि देखो, तुम मुझे संत पुरुष कहकर के भीतर बुला रहे हो। अगर मैं अपना परिचय दूंगा तो तुम घृणा से नाक धो सिकोड़ो। कहा, अच्छा आपका क्या परिचय? बाहर के व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम है पाप। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए साधक ने। आप तो सचमुच संत हैं। संत इस प्रकार की विनय अपने जीवन में बरतते हैं। आप सचमुच संत हैं। आपके चरणों की धूल लेकर के मैं कृतार्थ हूंगा, आप भीतर पधारिए। तो आपने कहा कि मैं संत नहीं हूं, मैं सचमुच पाप हूं, मैं कोई छद्म नहीं कह रहा हूं। अच्छा, आप यदि पाप हैं तो आपने मुझे जगा कैसे दिया?
बहुत ग्लानी थी, भगवान के पास बहुत देर तक तुम रोते रहे, कहते रहे प्रभु यह जीवन भी बिल्कुल निष्फल है, मेरा इतना सा नियम भी नहीं सकता। उस दिन इतना तुम रोते रहे कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं तुम साक्षात भगवान के पास ही न चले जाओ। तो मैं मन में सोच रहा था, आज ही अगर तुम्हें देरी हो गई और आज भी उठ करके तुम्हारे मन में पश्चाताप हुआ और ग्लानि हुई, तो तुम कहीं इतनी विकलता के साथ रोने कि कहीं साक्षात भगवान ही तुम्हें मिल जाए। अब तुम निश्चिंत रहो, जब ध्यान अपने करीने से करते रहो, नियम पूर्वक करते रहो और बस निश्चिंत होकर के संतुष्ट रहो कि मैंने हाँ इतनी माला फेर ली, गुरु जी ने जितना बताया उतना मैंने कर लिया। इसका मतलब क्या है कि ईश्वर के लिए प्रेरित कौन करेगा? रावण करेगा? क्या रावण हमें ईश्वर के लिए प्रेरित कर सकता है? विभीषण इस तथ्य को नहीं समझते कि रावण ने कितनी भी सुविधा कर दी हो, किसके लिए की है सुविधा? इसलिए कि यह ईश्वर की ओर अधिक न जाए। हम साधना तो करते हैं पर साधना में न तो भाव है न विवेक है, हम यांत्रिक रूप से साधना करते हैं। हाँ, गुरु जी ने कह दिया कि 2 माला फेर लेना, 4 बजे उठ जाना, इसलिए हम उठ जाते हैं और माला फेर लेते हैं और हमें बड़ा संतोष लगता है, गुरु जी ने जो कहा है वह हमने कर लिया। हमारी साधना में न तो भाव की तीव्रता है न विवेक है, इसीलिए हम भगवान की ओर बढ़ नहीं पाते। विभीषण साधक हैं, जीव साधक हैं, साधना करते हैं, तरह तरह की दुष्प्रवृत्तियों के बीच में रह करके भगवान की ओर बढ़ नहीं पाते और इसका एकमात्र कारण यही है कि उनकी साधना में भाव की कमी, उनकी साधना में विवेक की कमी। और वो यही सोचते हैं कि रावण सारी साधना में मेरे लिए सब प्रकार की सहायता कर दे रहे हैं। अरे, रावण की सहायता से कोई राम को प्राप्त करेगा? यह तो संभव नहीं है। यह विवेक विभीषण को चाहिए और यह विवेक देते हैं हनुमान जी। हनुमान जी जब सीता जी को खोजते हुए जाते हैं लंका नगरी में, और जिस समय उनके मन में विचार आता है कि लंका निश्चर निकल निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, अरे यहाँ सज्जनों का कहाँ वास हो सकता है, यह तो निशाचरों की नगरी है, अब मैं जाकर के किससे सीता जी का पता पूछूं? तो वहां पर तुलसी लिखते हैं कि ताही समय विभीषण जागा, उसी समय विभीषण जागते हैं। मानो विभीषण भी सोए हैं, माने सभी सोते हैं पर विभीषण भी सोए हैं, मानो यह साधक भी सोया हुआ है। और साधक को जगाने का काम संत ही करता है, यह संत ही जीव को जगाता है, उसमें विवेक भरता है, भाव भरता है। संत और जीव का मिलन होता है, बड़े प्रेम से दोनों मिलते हैं और तब विभीषण जी आकुल होकर के अपनी कथा कहते हैं कि मैं इतना पामर असुर कुल में जन्म लेने वाला, जिसका भाई रावण और कुंभकर्ण, क्या भगवान मेरा भी ग्रहण कर सकते हैं? और तब संत भरोसा देता है, विश्वास भरता है जीव के हृदय में। आप इस प्रकार निराश क्यों होते हैं? आप जब जग गए हैं, पूछिए, भगवान के पास आइए, भगवान तो आपको ग्रहण करेंगे। क्या मुझे ग्रहण करेंगे? विभीषण आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, मुझे पामर को असुर कुलोत्पन्न, मुझे जो रावण और कुंभकर्ण के साहचर्य में रहा है, जिस रावण ने उनकी पत्नी का अपहरण किया है, क्या वे मुझ पर विश्वास करेंगे?
मुझे ग्रहण करेंगे और हनुमान जी बुलाते हैं, भगवान का निमंत्रण देते हैं। संत जीव को ईश्वर का निमंत्रण देता है, कहता है आओ तो, आकर के देखो तो। और फिर संत कहते हैं, जीव के स्तर पर उतर आते हैं। हनुमान जी कहते हैं, आप पूछ रहे हैं कि प्रभु मेरा ग्रहण करेंगे या नहीं, तो मैं ही कौन मार कुलीन हूं, कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं तो कपि हूं, बंदर हूं, सब प्रकार से चंचल हूं। अरे मेरा ही कौन सा कुलीन वंश है और मैं कैसा हूं, मेरा नाम कैसा है, जैसा हमने उस दिन देखा, प्रात ले जो नाम हमारा ते ही करता ही न मिले आहारा। नाम ऐसा है विभीषण जी, यदि सुबह सुबह कोई हमारा नाम ले दे तो उस दिन उसको खाना ही ना मिले। हम इतने पामर, हमारा वंश देख लीजिए, परंतु फिर भी प्रभु ने अपने चरणों में स्थान दिया है हमें, आप आइए। विभीषण को वे निमंत्रण देते हैं और जब विभीषण की हृदयता का परिचय लगता है, प्राप्त होता है हनुमान जी को, तो अंत में भी एक बात कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी जहो जान की माता। तब कहा कि भाई, बड़ी सुंदर शब्द की योजना यहाँ पर की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, जब विभीषण ने अपने भाव को, अपनी भक्ति को प्रकट किया श्री राम के चरणों के प्रति, तब हनुमान जी कहते हैं, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। अब तुम मेरे भाई हो गए और जानकी हम दोनों के लिए माता बन गई, और यदि मैं आपका भाई हो गया तब तो रावण को अपना भाई कहना बंद कर दीजिए। यह तात्पर्य है मनोवैज्ञानिक, अभी तक आप रावण को अपना बड़ा भाई मान करके कर्तव्य बोध से पीड़ित होते रहे हैं, अब आप छोड़ दीजिए। यदि आप मुझे भाई स्वीकार करते हैं, जानकी जी को माता स्वीकार करना पड़ेगा, आप आइए। और सचमुच इतने सोए थे विभीषण, यहाँ तो वे श्री राम में भक्ति करते हैं, जानकी जी में भक्ति करते हैं, पर जानकी जी कितने महीनों से अशोक वन में वहां पर बंद करके रखी गई हैं। एक भी दिन विभीषण गए वहां पर चरणों में प्रति प्रणिपात किया नहीं, क्यों, रावण का डर है। इधर भक्त भी हो, इष्ट देवी भी मानते हो सीता जी, और इष्ट देवी तुम्हारे यहाँ अशोक वाटिका में आकर के कैद है, और तुम इष्ट देवी के दर्शन करने नहीं चाहते। यह सोया हुआ जीव है, डर रहा है, यदि मैं जाऊंगा तो रावण नाराज हो जाएगा। जैसे जब सत्ता का परिवर्तन होता है ना, तो जो दल बदलू होते हैं देखते रहते हैं कि मिनिस्टर नाराज तो नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर नाराज तो नहीं होगा, जाता तो है, छिप छिप करके मिलने जाता है, डर लगता रहता है कहीं पता तो नहीं चल जाएगा, पता चलने से फिर मेरा पत्ता कट जाएगा, डर लगता है। विभीषण को डर लगता है कि यदि मैं जानकी जी के पास जाऊं तब तो शायद रावण क्रुद्ध हो जाएंगे, और फिर मैं भाई को नाखुश नहीं करना चाहता। यह विभीषण है कि इष्ट देवी बंद है, वही है लंका में, विभीषण को पता है कि कहां पर बंद है, क्योंकि हनुमान जी ने पूछा, देखी चहो जानकी माता, विभीषण जी पता दे देते हैं वहां है अशोक वाटिका, सब मालूम है, पर जाते नहीं। रावण की उतनी भर्त्सना भी नहीं करते, निंदा भी नहीं करते, इतना ही कहते हैं कि आप नाहक लेकर के आ गए, व्यर्थ आपने चुरा लिया, अपहरण किया, यह अच्छा नहीं है, पर दबे कंठ से, उससे जोर से कंठ से तो कुंभकर्ण रावण को धिक्कारता है। जब जगाया कुंभकर्ण को, रावण की आधी सेना खत्म हो गई युद्ध में, तब वह कुंभकर्ण को जगाता है, आंखें मलता हुआ वह बीच में उठता जब है तो कहता, क्यों जगाया तूने मुझे, तो कहता यह हो गया, और तब बहुत जोरों की बात कहता है, जगदम्बा हरि आनि कै सठ चाहसि कल्याण, सठ कह देता है, रावण बड़ा भाई है, पर कुंभकर्ण ने कहा, रे सठ, रे मूर्ख, जगदम्बा को चुरा करके लाया है पर अब कल्याण चाहता है। विभीषण में इतनी भी हिम्मत नहीं है, जीव कितना सोया हुआ है, हम ऐसे ही सोए हैं, हम धर्म धर्म की बात तो करते हैं पर कोई अधर्म होता दिखाई देता है तो हम उसके प्रतिकार के लिए आगे नहीं बढ़ते। यह कैसा विचित्र सा धर्म है कि जो धर्म अधर्म का प्रतिकार न करे, जो धर्म अधर्म का पोषण करे, यह भी कोई धर्म है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा भीष्म को मारो, द्रोणाचार्य का वध करो। हमें ऐसा लगता है कि कृष्ण कितने बड़े हिंसक हैं, भीष्म पितामह कितने बड़े धर्माचार्य हैं, द्रोणाचार्य भी धर्म में कितने आगे हैं, और उनको मरवा दिया, छल से मरवा दिया, भीष्म पितामह के सामने वहां पर रख दिया या इस प्रकार रख दिया, और उसी प्रकार सामने शिखंडी को खड़ा करके भीष्म को मरवा दिया, और द्रोणाचार्य के लिए झूठ बुलवा दिया, अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा, यह ठीक नहीं है। यह कृष्ण कैसे हैं? धर्म का संस्थापन करने के लिए आए हैं। पर कृष्ण का तात्पर्य क्या है? देखो, जो जिन्हें तुम धर्म मान कह रहे हो, ये जो हैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, किसका पक्ष ले रहे हैं? ये जानते हैं कि पांडवों का पक्ष धर्म का है, दुर्योधन का पक्ष अधर्म का है। यह जान करके भी वे दुर्योधन की तरफ से खड़े हुए हैं। अर्जुन से वे कहते हैं, अर्जुन, अधर्म का नाश तो बाद में होगा, पर जो धर्म अधर्म की पीठ ठोकता है उस धर्म का नाश पहले होगा। वह धर्म हमें नहीं चाहिए जो अधर्म की पीठ ठोकता है। उस धर्म को संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं जो अधर्म को बढ़ावा दे। यदि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का धर्म केवल दुर्योधन के अधर्म को बढ़ा सकता हो, ऐसे धर्म का नाश पहले करना होगा, फिर हम दुर्योधन रूपी अधर्म को देखें। यह कृष्ण का तात्पर्य है, और ऐसा अद्भुत कृष्ण का जिसे कहेंगे दर्शन है, तो यहाँ पर भी यह विभीषण खड़े तो हैं, भक्त तो हैं, जीव साधक तो हैं, पर डर लगता है कि रावण कहीं नाराज ना हो जाए। जाकर के इष्ट देवी के चरणों में प्रणिपात तक नहीं किया, रावण की निंदा भी नहीं की, रावण को खुलकर के सुना भी नहीं सके, कुंभकर्ण ने सुना दिया। और इसीलिए हनुमान जगाते हैं, संत जीव को जगाता है, कहता है कि मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ, और यदि आप मुझे भाई मानते हैं तो रावण को भाई मानना छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए विभीषण तो जागे, पर सो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा कहे, माँ परीक्षा है, कल तू मुझे जल्दी जगा देना, और माँ ने उसे 4 बजे जगा दिया। वह उठता तो है, उठ मुन्ना, वह उठा और माँ यूं ही गई, फिर मुन्ना सो जाता है। तो ठीक, विभीषण सो गया। साधक ऐसे ही सो जाता है, कैसे मालूम पड़ा? मालूम पड़ा जिस समय हनुमान नागपाश में बद्ध होकर के रावण की सभा में लाए जाते हैं, और जिस समय रावण को बड़ा क्रोध आता है, उसका पुत्र मारा गया, बहुत बड़ी सेना मारी गई, उसकी वाचिका उजा दी गई एक बंदर के द्वारा, रावण कहता है कि इसका वध कर दो। उसी समय विभीषण अंदर आते हैं, नीति विरोधन मारिए दूता, जोरों से हाथ उठा करके कहते, ठहरिए ठहरिए, यह तो दूत है, दूत को मारना उचित नहीं है, यह नीति के विरुद्ध हो जाता है दूत का वध करना। तब क्या करना है? अंग भंग करी पठवो बंदर, बंदर का अंग भंग करके भेज दीजिए। विभीषण यह कहते तो हैं और रावण मान जाता है। रावण कहता है, ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। विभीषण गदगद हो गए, मेरे भैया कितने अच्छे हैं, देखो मेरी बात मान लेते हैं, ऐसे भाई को मैं नाराज करूं, नाखुश करूं, असंतुष्ट और अप्रसन्न करूं? नहीं, यह विभीषण का तात्पर्य है। रावण राजी हो जाता है, पर विभीषण के मन में संदेह हुआ, जिसका दूत इस प्रकार बंधन में फंसा है, अरे वह क्या दूसरे का बंधन काट सकता है? अरे वह स्वयं पहले अपने दूत का बंधन दूर करे, और फिर तो दूसरे को जगाए। और यह सोच करके विभीषण फिर सो गए कि जो जगाने आया है, जो जागरण का संदेश देने आया है, वह स्वयं बंद हो गया, बंधन में फंस गया। और इसीलिए जो थोड़ा सा विश्वास जगा था संत के साहचर्य से, वह भी सो जाता है विभीषण के भीतर में। यह हम देखते हैं, और फिर उसके बाद तो हम वह कथा सुनते हैं कि कैसे अंग भंग करने की बात जब कही तो रावण कहता है कि इसका अंग भंग करो, या ऐसा करो कि देखो यह जो बंदर है ना, उसकी सबसे अधिक ममता पूंछ पर होती है। वैसे बंदर है तो ज्ञानी, बड़ा ज्ञान का उपदेश तब से कर रहा है क्योंकि हनुमान जी ने श्री राम के स्वरूप का परिचय दिया। उस दिन हमने देखा कि कितना सुंदर परिचय दिया, भगवान राम के स्वरूप को रखा और कहा कि रे रावण तू उनकी शरण में जा, ज्ञान उनके मुख से निकला। और इसीलिए रावण कहता है व्यंग करते हुए कि है बंदर तो बड़ा ज्ञानी, इसने ज्ञान का तो बड़ा उपदेश दिया है, पर इसके भीतर में जरा ममता भरी भी है। मेरा स्वामी कहता है तो जो ज्ञानी है उसको ममता सोहती नहीं है, तो चलो मैं इसकी ममता को दूर किए देता हूँ ताकि इसका ज्ञान निर्बाध हो जाए, ममता से मुक्त हो जाए। और इसीलिए व्यंग करते हुए हंसते हुए कहता है कि जो बंदर है ना, उसकी ममता पूंछ पर होती है, तो पूंछ को अगर हम जला दें तो इसकी ममता जल जाएगी और यह विशुद्ध ज्ञानी हो जाएगा, और ठठा करके हंस करके कहता है, कपि कहे ममता पूछ पर सब ही कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देफ लगाई। कि लाओ एक पट लाओ, कपड़े ले आओ, तेल ले आओ, कपड़े को तेल में डुबो और बांधो इसकी पूंछ में और उस पूंछ को आग लगा दो, तो यह जब जाएगा बंदर इसकी पूंछ जल जाएगी तब बड़ा मजा आएगा। फिर अपने स्वामी के पास जाएगा ममता से विरहित होकर के। और तब हम पढ़ते हैं कि पूंछ को उसी प्रकार कपड़े से बांधते हैं, कपड़ा ले आते हैं, और वहां पर बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने चित्रण किया है कि कौतुक करते हैं हनुमान जी अपनी पूंछ को, वे लंबा करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। अब बढ़ाते जाते हैं तो वहां पर चित्रण बड़ा सुंदर है कि बहुत से राक्षस सब पकड़ करके पूंछ को इस प्रकार से खड़े हैं और पूंछ उनकी लंबी होती जा रही है। कहते हैं कि लंका में कोई घर ऐसा नहीं था जहां से कपड़ा ना आया हो, तेल ना आया हो, सारा कपड़ा चुक गया, सारा तेल चुक गया। और जब किसी प्रकार वह बंद करके तैयार होता है और जब ऐसा हो रहा है, हनुमान जी बड़ा मजा करते हैं, वे अपनी पूंछ का संकोच करते हैं, समेट लेते हैं और जितने लोग पकड़े खड़े हैं धड़ाम से गिर जाते हैं। ये एक कौतुक का चित्रण है बालकों के लिए, परंतु उसके पीछे एक बड़ा दूर ऐसा संकेत है। वह संकेत क्या है कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बड़ा किया और अपनी पूंछ को छोटा किया, रावण को दिखा रहे हैं कि देख ठीक है, तू कहता है कि तू मेरी ममता का नाश करेगा, रे रावण यदि मैं अपनी ममता को बढ़ा सकता हूँ तो अपनी ममता को मैं कम भी कर सकता हूँ, पर तू केवल अपनी ममता को बढ़ाना ही जानता है। जिस व्यक्ति के हाथ में उसकी ममता का बढ़ना या कम होना है, जान ले कि वह ठीक ठीक क्या ही है, उसमें ममता नहीं है। जो अपनी ममता को इच्छा अनुसार चाहे तो बढ़ा ले, चाहे तो उसे कम कर ले। और इसके द्वारा हनुमान जी ने प्रदर्शित किया, रे रावण तू केवल अपनी ममता का विस्तार करना जानता है, देख ममता का जो विस्तार कर सके और जो ममता को कम कर सके वही ठीक ज्ञानी है। या उसके पीछे का तात्पर्य। और फिर धू धू कर करके लंका नगरी जलती है और चले जाते हैं। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। सारी लंका नगरी जल गई, एक विभीषण का घर ही नहीं जला, उनका भवन ही सुरक्षित रहा। अब यह कैसे, तो कई कई लोगों ने टीका की कि विभीषण जी के छोड़ करके बाकी सभी घरों से तेल या कपड़ा आया था, इसलिए हनुमान जी ने उन सभी घरों को तो जला दिया, विभीषण का घर सुरक्षित रखा। एक तात्पर्य यह भी कि जो भक्त है वह कितना भी दावानल संसार का उसकी चारों तरफ धड़कता रहे, भगवान की भक्ति के कारण वह सुरक्षित रहता है। भगवान की भक्ति की शीतलता उसे उस दावानल से सुरक्षित रखती है। भक्त है ये विभीषण, भक्त साधक है, जीव साधक है, इसलिए भगवान की भक्ति के कारण वे सुरक्षित है। एक या और दूसरा राजनैतिक कारण, हनुमान जी ने देखा इसे अपने बड़े भैया का बड़ा मोह, कर्तव्य का बोध है, और इसीलिए विभीषण छोड़ नहीं पा रहे अपने बड़े भाई को। अगर इन दोनों में किसी प्रकार मनमुटाव हो जाए, दोनों में मनोमालिन्य हो जाए, तो विभीषण कम से कम रावण से दूर तो हट सके, भगवान के पास जा तो सके। अब इसीलिए विभीषण का घर वे सुरक्षित छोड़ देते हैं। और इसे क्या हुआ, सब कुछ रावण के मन में मालिन्य उत्पन्न हो गया। रावण ने मन में सोचा, देखो तो क्या यह विभीषण और ये बंदर दोनों मिले हैं, ऐसा बड़ा विचित्र सा लगता है कि मैं बंदर को मारना चाहता था, विभीषण ने आकर के उसे बचा दिया, और बंदर ने सारी लंका नगरी जला दी और विभीषण का घर बचा दिया। दोनों एक दूसरे से मिले मालूम पड़ते हैं। बड़ा क्रोध आया रावण को कि मेरा भाई इससे मिला हुआ हो, इस शत्रु के दूत से पसंद नहीं आया, पर अपने क्रोध को कैसे व्यक्त करे, किसी प्रकार क्रोध को वह रोक लेता है। पर एक दिन सभा में जिस समय विभीषण ने वैराग्य का उपदेश देना शुरू किया कि आप जानकी जी को जाकर के सादर वापस लौटा दीजिए, राम तो भक्त मानो वे ऐसे शरणागत वत्सल हैं, साक्षात भगवान हैं। अरे एक मूर्ख, तू तो स्वयं भगवान की शरण में गया नहीं, जानकी जी के दर्शन करने गया नहीं, जीव के साथ यही तो मुश्किल बनती है। हम कितना सुंदर प्रवचन देते हैं, व्यास पीठ पर बैठकर दूसरों को समझाने का मौका आता है तो कितना सुंदर समझाते हैं, पर हम क्या स्वयं समझते हैं। विभीषण रावण को तो समझा रहा है, क्या वह स्वयं समझता है। भिलाई की एक सत्य घटना है, किसी ने आकर के एक माता को खबर दी कि कुछ लोग आ रहे थे बच्चे, उसमें माई तुम्हारा बच्चा एक ट्रक में दब गया और काल कवलित हो गया, लोग शव को ला रहे, और माँ जानते हैं वह कितनी आकुल हो गई होगी, उसका वह लाडला प्यारा बच्चा वहां पर दबकर के मर गया। कितनी विकल है, रो रही है, पड़ोस ने आ गई समझा रही है, बार बार मूर्छित होती है, पानी के छींटे लगाते हैं, कहते हैं देखो भगवान ने तुम्हें दिया था, भगवान ने ले लिया। ज्ञान की कितनी बातें, वैराग्य की कितनी बातें, विवेक की कितनी बातें। एक थी पड़ोसन, वह बार बार समझा रही थी, रामायण की बातें समझा रही थी, ज्ञान की बातें समझा रही थी। लाया गया बच्चे को, अब बच्चे पर कपड़ा लिपटा था शव पर, वह माँ पछाड़ खा करके गिर पड़ती है, बच्चे के उस शव पर लिपटे कपड़े को दूर करती है। अचानक अचानक यह हो गया कि वह जो बच्चा था वह बच्चा उसका नहीं था, वह बच्चा उस पड़ोसिन का था जो अभी तक समझा रही थी। और जो ही उसने देखा मूर्छित होकर के वह गिर पड़ी, और जो अभी तक मूर्छित थी वह एकदम होश में आ गई। यह विचित्र है, यह जीवन का विचित्र सत्य है कि उपदेश दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। विभीषण उपदेश कर रहे हैं, आप भगवान के शरण में जाइए, तुम गए हो। रावण को बड़ा गुस्सा आया, जोरों से लात मारी, मामपुर बसित तपस्न पर प्रीति सच मिलु जाय सिखा नहीं कौन थी। तू मेरे घर में बैठा है और उन तपस्वियों से प्यार करता है, यारे मूर्ख जाकर के अपनी नीति उन्हीं को बता, मैं अपनी नीति मुझे बता रहा है, तेरी नीति के कारण आज मेरी लंका नगरी चली, जा तू मिलकर के अपनी नीति उन तपस्वियों को बताना। और तब वहां पर विभीषण के मन में आक्रोश उत्पन्न होता है, पहली बार दुरुंग के विरोध में विभीषण की आवाज उठती है। यही हनुमान जी चाहते हैं, अरे संत के हृदय में, साधक के हृदय में यदि पाप के विरुद्ध आवाज न हो, यदि अपुण्य के विरोध में, अधर्म के विरोध में आवाज न हो, तो वह साधक क्या है।